श्रीमद्भागवतम स्कंद 10 अध्याय 22 श्लोक संख्या 1 दिनांक 2 मई 2015 स्पीकर आदि प्रभु
पृष्ठम स्थापित जैन भूतले स्वयं रूप कदामयम ददाति स्वपदांतिकम् वंदे अहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथ नितं तं सजीवं साधयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगण ललिता शिविशाखानितंश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो आज के प्रसंग में श्री सुखदेव गोस्वामी ने बता रहे हैं गोपियों के हृदय में जो कृष्ण के प्रति जो आकर्षण है कितने प्रबल है। गोपियों के प्रति ना गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम है कितने एकांतिक है, कितने एकनिष्ठ है। अब ये प्रेम, इस प्रकार का प्रेम है भगवान के प्रति गोपियों का, तो भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने पति के रूप में वो कात्यायनी व्रत करना आरंभ कर दी। कैसे भी हुआ हमें कृष्ण प्राप्त हो, भले ये जो गोपियाँ थी कुछ विवाहिता थी और कुछ अविवाहिता भी थी, लेकिन कृष्ण की जो मोहक आकर्षण इतने गोपियों को गोपियों के मन में जाकर के बैठ गया था। उनके सुंदरता, कृष्ण के जो सौंदर्य है, तो इस सौंदर्य के प्रति गोपियाँ इतने आकर्षित हो चुके थे, तो उनको पति के रूप में पाने के लिए वो वृंदावन की जो कात्यायनी देवी माता का शरण ली। हे माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए, जैसे नंद के जो ये पुत्र हमारा पति बन जाए। और हमें पिछले श्लोकों में हमें देखे हैं, हमें सुन करके आए कृष्ण के प्रति जो अलग होने की जो दुख है उनके हृदय में, कृष्ण के प्रति कृष्ण से जो वियोग होने की जो उनके हृदय में एक प्रकार की दर्द है, ये दर्द कुछ वाणी के रूप में प्रकाश पाया हुआ। जब किसी व्यक्ति के भीतर कुछ दुख होती है, वो दुख वो वाणी के रूप में निकलता है। ठीक उसी प्रकार गोपियों के हृदय में जो कृष्ण को न पाने की, कृष्ण से दूर होने की, कि कृष्ण के वियोग से जो दुख हो रही थी, वो हम पिछले अध्याय में सुन के आए, वो अलग अलग अपने भाव को, दुख की जो भाव है वो प्रकाश कर रही है। ऐसे तो कृष्ण ब्रजवासी भक्तों से कभी वियोग नहीं होते हैं, ब्रजवासी भक्तों से कृष्ण कभी भी अलग हो ही नहीं सकते हैं। और ऊपर से कृष्ण ये बात बता दी है, मैं वृंदावन को छोड़ के और किधर नहीं जाता। तो फिर वृंदावन से जो कृष्ण बाहर गए वो कौन थे? वृंदावन के कृष्ण कैसे हैं? ना धोती पहनते हैं घुटने तक और हाथ में बांसुरी, सर में मोरपंख, ये वृंदावन के कृष्ण। अब वृंदावन के भाव कैसे हैं? वहाँ पर जसमती मैया कृष्ण को एक रस्सी ला करके बांध देती है और एक डंडा दिखा करके शासन करती है, अरे कन्हा तूने ये क्या किया, तो हमारे घर में क्या कमी है, तो दूसरे के घर में क्यों जाता है? वहाँ पर नंद ब्रज में जसमती मैया कृष्ण को बांध करके इस प्रकार का शासन करती है। जो भगवान श्री कृष्ण के चरण धूल को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा इंद्र जैसे महान इतने बड़े बड़े व्यक्ति भी मतलब तरसते हैं और वो चरण धूल को उठा करके अपने कपाल में सर में लगाते हैं। और उस जगह पर नंद बाबा जब कृष्ण को बोलते हैं बेटा जाओ मेरे पादुका ले आओ, तो उस जगह पर कृष्ण ने नंद बाबा का पादुका कैसे लेके आते हैं, ब्रह्मा से भी भगवान श्री कृष्ण के चरण धूल को अपने कपाल में लगाने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ती है। ऐसे लक्ष्मी जी बड़े बड़े मनीषी लोग बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोगों को कितने तप करना पड़ती है वो श्री कृष्ण के चरण धूल को प्राप्त करने के लिए, लेकिन वो भगवान नंद बाबा का पादुका को अपने सर में लेकर के आते हैं। ये ब्रज की भाव है। और वो श्री कृष्ण जब द्वारका में आए और वो ब्रज के बाहर जब आते हैं वो वृंदावन के कृष्ण वो नहीं होते हैं। वृंदावन के ब्रज को छोड़कर के बाहर जो कृष्ण आते हैं वो वृंदावन के कृष्ण नहीं होते हैं, वो ऐश्वर्य कृष्ण होते हैं। मथुरा में जो कृष्ण गए हैं और द्वारका में जो कृष्ण गए हैं वो ऐश्वर्य कृष्ण हैं। वहाँ पर सब लोग उनका आदेश को अपेक्षा करते हैं, हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं। और वसुदेव जी देवकी कृष्ण को अपने गोद में लेने के लिए भय भी करती है। और वहाँ पर वो हमेशा राजा के रूप में रहते हैं, सर में मुकुट पहने रहते हैं। वो द्वारका और मथुरा की भाव है। ब्रज की जो भाव है भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतने प्रेम है, वो प्रेम के कारण कभी भी भगवान सोचे ही नहीं मैं ब्रज छोड़ करके बाहर जाऊँ। ये भगवान के शुद्ध भक्तों का निर्मल प्रेम का एक प्रकार का आकर्षण है। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के निर्मल प्रेम के प्रति इतने आकर्षित हो जाते हैं वो वैकुंठ को भी छोड़ देते हैं, लक्ष्मी जी को भी छोड़ करके अपने भक्तों के झुपड़ी में चले जाते हैं। ये भगवान के भक्तों का प्रेम का एक प्रकार का चमत्कार है, एक मिरेकल है। भगवान को कोई बंधन लगती है लेकिन भगवान का भक्तों की जो प्रेम है वो प्रेम की बंधन लग जाती है उनको। तो युधिष्ठिर महाराज को रात देख करके भगवान श्री कृष्ण प्रोग्राम बना लिए, अभी मुझे जाना भैया, मुझे अभी विदाई दो, मुझे अभी जाना है, आप लोग को राज मिल गया मुझे भी जाना है, मेरे घर पे जाना है। जब भगवान द्वारके की ओर चल रहे थे निकल रहे थे ठीक उस समय युधिष्ठिर महाराज बड़े प्रेम के साथ विनती कहे भैया और थोड़े दिन तो रुक जाओ। तो युधिष्ठिर महाराज के इतने प्रेम भरी जो विनती है उनका जो प्रार्थना है वो प्रार्थना को सुन करके भगवान श्री कृष्ण जो द्वारका जाने के लिए प्रोग्राम बनाए थे वो प्रोग्राम को कैंसिल कर दिए और थोड़े समय और थोड़े दिन हस्तिनापुर में रुक गए। श्री राधा गिरिधरी भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी की, श्रील प्रभुपाद की। तो भगवान श्री कृष्ण जो द्वारका को चल रहे थे तो वो रुक गए युधिष्ठिर महाराज का प्रेम को देख करके। और युधिष्ठिर महाराज के हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो प्रेम के कारण जब कृष्ण द्वारका को चले तो कृष्ण यदि वो स्वयं सुरक्षित है लेकिन युधिष्ठिर महाराज के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतने प्रेम थी, ये प्रेम के कारण से भगवान श्री कृष्ण के साथ सेना भेजे जाओ, क्योंकि अभी बहुत सारे राजा लोग मारे गए, कोई विपक्षी होगा कोई शत्रु होगा कृष्ण को दुख देगा कि कोई प्रकार का हानि पहुंचाएगा, इसीलिए युधिष्ठिर महाराज को सेना को भगवान श्री कृष्ण के साथ भेजें। और जहाँ तक भगवान श्री कृष्ण की रथ उनके नज़रों से पांडवों के नज़रों से अदृश्य नहीं हो जाती है तब तक वो देखते रहें भगवान श्री कृष्ण के रथ को, जब तक कृष्ण उनके नज़र से बाहर नहीं हो जाते तब तक वो देखे रहें। एक एक प्रेम की एक मोहक है, ये एक प्रेम के एक गंध है, ये दिव्य प्रेम का इस प्रकार का एक बातें होती है वो भक्तों को मधुवाला करता है, कर देता है। वो भगवान के प्रति और कुछ जानना पसंद ही नहीं करते और उनको कुछ और कुछ जानना इच्छा भी नहीं रहता है। ये भगवान के प्रति दिव्य प्रेम का एक लक्षण है। तो वही ब्रजवासी प्रेम कैसे है, ये ब्रज प्रेम किस प्रकार का होती है, स्वयं भगवान चैतन्य के रूप में जो ये संसार में प्रकट हुए हैं, गोपी भाव को स्वीकार किए, गोपी भाव को स्वीकार करके विशेष करके विरह भक्ति का प्रचार किए चैतन्य महाप्रभु ने। ये विरह भक्ति प्रत्यक्ष भक्ति से कई गुना अधिक महान होती है। प्रत्यक्ष भक्ति से विरह भक्ति कई गुना श्रेष्ठ माना जाता है। भक्त का हृदय संपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, क्योंकि विरह का अग्नि, विरह भक्ति का जो अग्नि है, ये अग्नि जब एक भक्त के हृदय में प्रकट होती है, वो भक्त के हृदय से संपूर्ण रूप से पाप धुल जाती है। तो यही विरह भक्ति को भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस संसार में आकर के प्रचार किए। गोपी गोपी विरह कैसे है, जब चैतन्य नहीं आते तो गोपी विरह का जो गुह्यतम रहस्य को तो संसार जान नहीं सकते। स्वयं गोपी का प्रेम कैसे, स्वयं वो ये बात को बताने के लिए देखो गोपियों का प्रेम किस प्रकार का होती है मेरे प्रति, ये चीज को दिखाने के लिए संसार में उनको आना पड़ा। ये एक मुख्य कारण है। भक्ति क्या चीज होती है, भक्ति का आकर्षण कैसे होती है, तो वो बात को ये संसार को बता देने के लिए भगवान श्री कृष्ण चैतन्य ये संसार में प्रकट हुए। खाली ये वृंदावन के, ये खाली चैतन्य महाप्रभु की बातें नहीं है। और चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में कृष्ण विरह में रहते थे, वो हमेशा वो तड़पते थे कृष्ण के लिए, कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, क्या करूँ, मुझे कैसे ब्रजेंद्र नंदन प्राप्त होंगे। यहाँ तो कि वे विरह में इतने ऐसे कभी कभी बोल देते, वो लंपट मेरे साथ कुछ भी करे लेकिन फिर भी वही मेरा सर्वस्व है। ऐसे चैतन्य शिक्षाष्टक में वो खुद की जो हृदय की जो भक्ति की जो गहराई है, ये श्लोक में प्रकट किए हैं। और जगन्नाथपुरी में जब जगन्नाथ जी के एक उद्यान है, उद्यान में चैतन्य महाप्रभु बैठे थे, प्रताप रुद्रदेव जाकर जो गोपी गीत को गाए, जो चैतन्य महाप्रभु को भगवान दर्शन देने के लिए बार बार इनकार कर रहे थे, जैसे प्रताप रुद्रदेव गोपी गीत को अपने गीत में वो गोपी भाव को प्रकट किए गीत के माध्यम से, चैतन्य महाप्रभु दौड़ के आए और उनको अपने गले में लगा लिए। ये ब्रज का आकर्षण है, स्वयं भगवान को भी वो ब्रज के बाहर नहीं देता है, और भगवान ब्रज को छोड़कर बाहर जा ही नहीं पाते हैं। खाली ये बात नहीं, वृंदावन के पेड़ पौधे भी हमें पीछे सुन के आए हैं। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी कह रहे हैं, हे बलराम, हे दाऊ जी, देखो ये वृंदावन के जो वृक्ष है वो कोई सामान्य नहीं है, क्योंकि भगवान जब मधुवन से निधिवन चले जाते थे तो मधुवन के जो वृक्ष होते थे वो कृष्ण के विरह में रोते थे और अपने को धिक्कारते थे, हम कितने हतभाग्य हैं, भगवान हमको छोड़ के चले गए और वृक्ष के रूप वृक्ष की जोनी में होने के कारण हमें उनके उनके साथ नहीं जा पाए। अब कृष्ण की जो वियोग है, वो वियोग की जो दशा है वृंदावन के वृक्षों को भी सताती थी। वृंदावन के जो वृक्ष है वो कृष्ण के वियोग का दुख को अनुभव करते थे, दुखी हो रहे, सताए जा रहे थे। कृष्ण की विरह इस प्रकार का एक अद्भुत होती है। वो विरह जिसको वो प्राप्त हुआ तो फिर तो अनुभव, ये कोई बताने की बात नहीं है, वो बात अति गहरी वस्तु है, वो बड़े ही अति रहस्यमय चीज होती है। यही बात को श्रील सुखदेव गोस्वामी को अपने उनके शिष्य परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, ऐसा क्या बात है ये वृंदा ब्रजवासी अपने घर घर परिवार अपने संबंधी ऐसे कि अपने प्राण से भी अधिक कृष्ण को प्रेम करते हैं, अपने घर परिवार अपने प्राण से भी अधिक कैसे वो प्रेम कर पाती है ये गोपियाँ वृंदावनवासियाँ। तो उसके जवाब में परीक्षित महाराज के जवाब में जवाब देते हुए श्रील सुखदेव गोस्वामी वहाँ पर बताए थे कि जितने सारी देहधारी जीव है वो सारे देहधारी जीवों के लिए जो आत्मा होती है वो सर्वाधिक आकर्षक वस्तु होती है, और ये आत्मा जो कृष्ण का अंश है इसीलिए कृष्ण सबको प्रिय है। हमारे शरीर के भीतर जो आत्मा है ये क्या है, भगवान भगवत गीता में बताते हैं, मेरा अंश है। इस कारण से वहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि आत्मा कृष्ण का अंश होने के कारण वो सारे लोगों को प्रिय है, कृष्ण प्रिय है। लेकिन जब जीव अपने वैधानिक स्थिति को छोड़ देता है तो फिर अपने को शरीर मान बैठता है। लेकिन किसी भी प्रकार जब कृष्ण के प्रति अपने पिछले आकर्षण को जागृत कर लेता है तो वो तत्क्षणात समझ जाता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं कृष्ण का अंश हूं। तो फिर तो ऐसे जीवात्माओं के लिए ये शरीर संबंधी वस्तु के लिए वो श्रम नहीं करता। और जो भौतिक जगत में हम है ये मायामय है। यहाँ पर हर जीव मैं शरीर हूं और ये मेरा है। इसलिए कृष्ण बताते हैं कि मेरे में ध्यान लगाओ, इसलिए गोपियां कहते हैं, इसलिए सारे भक्तों की ये कहना है कि अपने जो ध्यान है, हमारे जो ध्यान है कृष्ण के ऊपर होना चाहिए, हमारा ध्यान कृष्ण को लगाना चाहिए। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आसु वैराग्यं ज्ञान च हेतुकम्। जैसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के प्रति किसी का प्रेम हो उत्पन्न हो जाती है, तत्क्षणात संसार के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाती है, तत्क्षणात उनके हृदय में दिव्य ज्ञान स्फुरित होती है। ये भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल के प्रति भक्ति का परिणाम, ये होता है लाभ। जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह रहे थे, जगदानंद पंडित नवदीप में गए थे उनके दर्शन के लिए, और जगदानंद पंडित कौन थे, सत्यभामा थे। जगदानंद पंडित जो थे चैतन्य लीला में वो सत्यभामा थे। और सत्यभामा का क्या रूल है, हमेशा वो रूठ जाते थे। जब नवदीप में आए थे चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए, नवदीप से एक मटका भर के चंदन का तेल लेकर के आए थे। जब आकर के गोविंद को बोले महाप्रभु के लिए मैं तेल लेके आए सुभाषित उनके शरीर में मर्दन करने के लिए, जब गोविंद जाकर के चैतन्य महाप्रभु को बोले प्रभु जगदानंद आपके लिए चंदन तेल लेके आया है, तो महाप्रभु क्या बोले, मैं एक दारी सन्यासी हूँ क्या, चंदन का तेल लगा करके बाहर नहीं जाऊँगा। तो कहने के अर्थ है जब तक एक भक्त के हृदय में वैराग्य ये संसार के प्रति कि ये शरीर के प्रति उत्पन्न नहीं होती है तो फिर ये संसार उनके लिए बहुत ही भयावह बन जाती है। यत यत भी पदम, हर पद में ऐसे जीवों के लिए खतरा है। लेकिन जैसे वो जीव भगवान के चरण में शरणागत हो जाता है, आज गोपियों का यही कहना है, वो कहते हैं अनुव्रत क्यों करते हैं, कैसे भी हो हमें कृष्ण चाहिए, कैसे भी हो हमें कृष्ण भावना भावित बनना है, यही ये जीवन की इरादा है, ये जीवन की यही लक्ष्य है, कैसे भी हो हमें कृष्ण का लक्ष्य होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य कृष्ण होना चाहिए, किसी प्रकार हमारे मन में कृष्ण बैठना चाहिए, ये जीवन की उद्देश्य यह है। मैं क्या बताया, हाँ जगदानंद पंडित नसरी, ऐसे भक्त जब भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में जाकर के शरणागत हो जाते हैं तो क्या होता है, समाश्रित पद पल्लव प्लबम। जो ये संसार के प्रति, जो भक्त लोग इस संसार के प्रति अपने हृदय में वैराग्य उत्पन्न कर लिए, और ये वैराग्य कब आती है ना, जब हम भगवान के चरण में शरणागत हो जाते हैं। समाश्रित जे पद पल्लव प्लबम, समाश्रित जो लोग शरणागत है, कहाँ पद पल्लव प्रभम, भगवान के चरण कमल रूपी नौका, ये भव एक अम्बुदी है। भागवतम में ये जो भव जहाँ पर हम रह रहे हैं, जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, वो जगह को अम्बुदी के साथ तुलना किया गया भागवत के द्वारा, भव अम्बुदी। और नौका क्या है, पद पल्लव प्रभम, प्रभम मतलब नौका, भगवान के चरण, भगवान के चरण जो है वो नौका है, और ये संसार जो है वो सागर है। यदि कोई व्यक्ति को ये भव समुद्र को पार करना है, ये संसार रूपी सागर को पार जाना है, तो एकमात्र उपाय है भगवान के चरण में शरण लेना। भले वो कितने भी एक्सपर्ट दक्ष तैरना वाला हो, यदि एक नौका का सहारा नहीं लेता तो वो समुद्र को पार लांग नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार ये संसार रूपी समुद्र इतने भयानक है, इतने भयंकर है, जब तक हम भगवान के चरण कमल रूपी नौका का सहारा नहीं लेते हैं भवाम्बुधि हाँ तो पार नहीं सकता, ये भव समुद्र को पार नहीं सकता। और जो आश्रय ले लिया ऐसे भक्तों के लिए जो भयंकर विशाल भव समुद्र है, आप देखते हो ना कि ये समुद्र कितने विशाल है, हमारा आंख नहीं पाता है कहाँ है किधर है, उनका कुल किनारा कुछ दिखता नहीं है। जब ये भौतिक संसार की ये एक थोड़ी सी समुद्र इतने उनका कोई कलना में नहीं कर पाते, फिर ये जो भव समुद्र है उनका अंदाजा कर पाना हमारा बुद्धि के हमारे छोटी सी मस्तिष्क के बाहर है, हमारे बुद्धि के बाहर की विषय ये है। लेकिन आसान कब है, कब वो चीज हमारे लिए सहज बन जाती है, बस पदम, जब हम भगवान के भक्त बन जाते हैं। बस पदम, एक बछड़ा के खुर में जितने पानी होती है ये समुद्र भक्तों के लिए उतना ही हो जाती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मेरे शरण में आ जाओ। तो गोपियां भी आज कहते हैं हमें किसी भी प्रकार हमारा मन को भगवान श्री कृष्ण में लगाना चाहिए, उनके रूप सौंदर्य के ऊपर हो कि उनके गुण के ऊपर हो कि चरित्र की लीला कुछ भी हो, हमारा मन वहां पर लगना ही चाहिए। इसीलिए पितामह भीष्म बता रहे थे हे विजय सखे रति अस्तु में अनुवादा। पितामह भीष्म कह रहे हैं कि अनुवादा, मुझे और कुछ ही नहीं चाहिए, मुझे कुछ ही नहीं चाहिए। विजय सखे, भगवान को विजय सखे करके संबोधित करते हैं पितामह भीष्म, इसीलिए क्योंकि अर्जुन का सखा थे भगवान और अपने सखा को विजय दिलाए थे। इसीलिए पितामह भीष्म कह रहे हैं कि विजय सखे रति अस्तु में, मेरा जो रति है अस्तु में, मेरा रति कहाँ पर हो, आप में हो। त्रिभुवन कमनं तमाला बन्नम रवि कर गौरवराम्बरम दधाने बपुकुल बपी बपु अलक कुल आवृत अनन अब्जम विजय सके रति अस्तु में अनुवादा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा रति आप में हो। भगवान का सौंदर्य ऐसे तीनों भुवन को मोहित करता है, तीनों लोकों को आकर्षित करता है, उद्ध मध्य अध तीनों लोकों को मोहित करता है। और उनका सौंदर्य किस प्रकार का है, कमाल वन्नम एक नीलमणि। इसीलिए जसमती मैया सुबह सुबह कान्हा को पुकारते थे इंद्र नीलमणि, इंद्र नीलमणि। इंद्र जो एक प्रकार का ब्लू डायमंड होती है और ये ब्लू डायमंड इतने सुंदर होती है उससे तो कई गुना अधिक और चमकते हैं भगवान का शरीर का कांति। जसमती मैया सुबह सुबह कृष्ण को बुलाते हैं इंद्र नीलमणि। जब भगवान के मित्र लोग वो ब्राह्मण पत्नियों के पास पहुंचे थे, ब्राह्मणों के पास पहुंचे थे तो ब्राह्मणों ने उनको कुछ हाँ ही नहीं कहा कि ना ही नहीं कहा। जब भगवान भेजे थे अपने मित्र को जाओ कुछ भोजन ले आओ, तो जब पहुंचे तो ब्राह्मण लोग ना हाँ हाँ कह कहते हैं ना, हमें जब किसी व्यक्ति के पास पहुंचते हैं कुछ तो अपेक्षा करते हैं, वो ना कह दें या हाँ कह दें। हमें डोने कुछ दान मांगने के लिए जाते हैं तो कोई व्यक्ति के पास खड़े होते हैं तो कुछ तो कहना चाहिए ना, ना मुझे ना नहीं है ना नहीं देना चाहिए या हाँ देना चाहिए, तो फिर हमें समझ में आता है ये व्यक्ति हमें कुछ देगा कि नहीं देगा। लेकिन ये भगवान के मित्र लोग जब ब्राह्मण के पास पहुंचे वो इतने स्वाहा स्वाहा करने में लगे हुए थे तो कुछ ही नहीं बोल रहे थे, तो ब्राह्मण लोग ये मित्र लोग सोचे वो लोग का कुछ विधि होगा बीच में बात नहीं करने का, तो खड़े ही रहे। उनका यज्ञ समाप्त तो हो गया फिर भी वो कुछ ही नहीं बोले, इतने उपेक्षा कर दिए। तो आके भगवान को बोले आप ऐसे लोगों के पास भेज दिए, वो हाँ ही नहीं कहे ना ही नहीं कहे। तो भगवान बोले ठीक है उनके पत्नियों के पास जाओ। और उनके मित्र लोग कहें फिर अपमान होना है क्या, तो भगवान बोले नहीं वो तैयार बैठी है, आप जाओ उनके पास वो भोजन देंगे आप लोग को। तो आए और ये जो ब्राह्मण के पत्नियां हैं वो साधारण स्त्रियां थी, कोई ये को कुछ जानते नहीं थे, लेकिन भगवान को कैसे पता हुआ उनको, ना मथुरा से एक मालिनी हमेशा वृंदावन आया करती थी फूल चयन करने के लिए, और वृंदावन से फल फूल लेकर के वो मालिनी जाती थी वृंदावन में, वो ब्राह्मण के पत्नियों के पास जाकर के वो फूल फल देती थी, और ब्राह्मण पत्नियां पूछती थी अभी इतने इतने सुंदर फूल इतने सुंदर फल कहाँ से लेकर के आती हो, तो मालिनी बोलती थी मैं वृंदावन से लेकर के आती हूँ, वहाँ पर वृषभानु नंदिनी राधिका है और कृष्ण है। जब कृष्ण के विषय में सुने तो और ब्राह्मण पत्नियों को आग्रह हुआ सुनने के लिए, फिर रोज वो मालिनी आती थी और ब्राह्मण पत्नियां पूछती थी मालिनी को, फल लेने की फूल लेने की इच्छा नहीं होती थी, कृष्ण के विषय में सुनने की इच्छा होती थी और सुनती भी थी, और मालिनी बताती थी अलग 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 कृष्ण की कथा, कृष्ण कथा वो अलग अलग बताती थी मालिनी ब्राह्मण पत्नियों को, सुनती थी सुन रखी थी। लेकिन जब उनके मित्र लोग आकर के बोले कि पहले कृष्ण को कान में देखें फिर जाकर के आंखों में देखें, कृष्ण को पहले आंख कान के द्वारा दिखा जाता है फिर बाद में ये आंख के द्वारा उनके सौंदर्य को पान किया जाता है, तो यही ब्राह्मण पत्नियों ने जब कृष्ण के सामने जाकर के पहुंचे अपने आंखों के द्वारा भगवान का रूप को अपने हृदय में धारण करके आलिंगन किए। हाँ, तो यहाँ पर यही बात होती है कि हमें किसी ना किसी प्रकार हमारे जो चित्तवृत्ति है वो भगवान के पास छोड़ना चाहिए, दे देना चाहिए। तो पितामह अब इसमें यहाँ पर कह रहे हैं कि आपका शरीर का जो कांति है वो तमाल वर्णम, एक है तमाल वृक्ष एक नील वर्ण का होता है, आपका शरीर का सौंदर्य इस प्रकार का है। हाँ, और क्या इसका नेक्स्ट लाइन, रवि कर गौर बराम बरम दधाने, और आप पितामह भीष्म बोल रहे हैं आप एक चमचमाता हुआ पोशाक पहन करके आपके मित्र के रथ पर सवार हुए हो, ऐसे सौंदर्य के प्रति मेरा आकर्षण हो जा, ऐसे आपका रूपमा सौंदर्य के प्रति मेरा मति लग जा, आपका जो बपू है आपका जो शरीर है वो चंदन की तरह चर्चित है, और जैसे आपका जो मुख है ये कैसे है न अनन अब्जम बपू अलक कुल आवृतम अनन अब्जम, आपका जो मुख है वो कमल फूल की भांति है, हरि भक्ति विलास में कमल फूल का बहुत बड़ी गुणगान हुई है, कमल फूल भगवान को बहुत पसंद है, इसलिए उनके सौंदर्य को कमल के साथ तुलना किया गया है। पितामह भीष्म बोल रहे हैं कि आपका मुख कैसे अनन अब्जम कमल फूल के भांति है, हे विजय सखे मेरा मति आप में हो जाए। ये जो कृष्ण भावनामृत है एक समुद्र है, और बाकी जो चीज है आप भले भी कितने वैदिक अनुष्ठान के द्वारा कितने भी बड़ी चीज प्राप्त भी कर ही लो ये कुआं के जल के भांति है, लेकिन कृष्ण भावनामृत उसके सामने समुद्र समुद्र जैसे। आप लोग सुने हैं जो नृगो महाराज वैदिक अनुष्ठान कर रहे थे ब्राह्मण के द्वारा स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए परिणाम क्या हुआ, क्या परिणाम हुआ, थोड़ी सी असावधानी होने के कारण उनको कुएं में गिरगिट बनकर के रहना पड़ा, और ऊपर से स्वर्ग भी नहीं मिला, स्वर्ग तो नहीं मिला और गिरगिट बनकर के कुएं के भीतर रहना पड़ा। ये बात ऐसा हो गया जैसे एक लोटा में रस्सी बांध करके कुआं में फेंके, और कुआं में फेंके थोड़ी सी असावधानी के कारण वो हाथ से वो रस्सी निकल जाए कि छूट टूट जाए, हाँ ऊपर से तो पानी नहीं मिला और मेरा कुआं मेरा लोटा भी गया। तो ये कृष्ण भावनामृत और ये और जितने भी जो भी कर लो उनके भीतर एक बहुत बड़ी अंतर है, तफात है। कृष्ण भावनामृत कभी नाश नहीं होता, समुद्र का जल जैसे किसी प्रकार का नाश नहीं होता, कुएं के जल नाश सूख जाता है, बारिश जब नहीं होती है ना कुआं का जल सूख जाती है लेकिन समुद्र कभी सूखता नहीं है, उसी प्रकार कृष्ण भावनामृत वो कभी घटता नहीं है। वैदिक अनुष्ठान आपके भीतर कोई कामना है वो इच्छा वो कामना को पूरा करने के लिए आपको वैदिक अनुष्ठान में अलग अलग रास्ता बताया गया है, इंद्र को पूजा करोगे ये चीज मिलने वाली है कि महादेव को पूजा करोगे ये मिलने वाली है, हाँ अलग अलग, जैसे गाँव में आप लोग देखे होंगे ये कुएं में स्नान करना है, ये कुएं में बर्तन धोना है, ये कुएं में गाय भैंस को स्नान कराना है, ये कुएं में कपड़े धोना है, ये कुएं का पानी पीना है, इस प्रकार का एक रिवाज है गांव में। लेकिन समुद्र, एक शुद्ध समुद्र का जल मिल गए, मिल जाए तो सब कुछ मिल गया, प्राप्त हो जाएगा ना उसके जल। तो कृष्ण भावनामृत में जो भी हमारा हजारों लाखों इच्छा हो वो सब उही में ही पूरा हो जाएगा। लेकिन वैदिक अनुष्ठान के द्वारा, अलग अलग क्रिया कर्म के द्वारा अलग अलग इच्छाओं का पूरी होती है। इसलिए तो यहाँ पर कहा गया, सपदि सखी बचन निशम्य मध्यंग रथंग निवेश्य निज पर बलयो रथंग निवेश्य स्थितवती पर सैनिक आयु अक्षणा हृतवती पार्थ सखे रति अस्तु में। जब भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र का सुने और अर्जुन ने कहे कि आप ले जाओ सफदी युद्ध क्षेत्र में, सखी बच्चा मतलब अपने मित्र का बातें को जब सुने भगवान श्री कृष्ण, निशम्य जब सुने मध्य रथंग पर सैनिक बलयम रथंग निवेश्य, पर मतलब गुरु और अपना दोनों, पर सैनिक बलयम रथंग निवेश्य, वो रथ को लेकर बीच में खड़ा कर दिए। वहां पर कृष्ण खड़े होकर क्या किए, स्थितवती, वहां पर स्थितवती खड़े होकर क्या किए, पर सैनिक आयु अक्षणा हृतवती, वो जो पर गुरु सैनिकों का केवल दृष्टिपात करके वो लोगों का आयु को भगवान ने हरण कर लिया। पर सैनिक आयु अक्षणा मतलब देख करके आयु को हर लिया, हृतवती हर लिया। पार्थ सखे, हे पार्थ की सखा, आप में मेरा मन लग जाए, मेरा भक्ति हो जाए, मैं आपके प्रति आकर्षित हो जाऊं। तो समय हो गया, यही बात गोपियां आज के अपने जो वाणी है, अपने जो हृदय की भाव के द्वारा संसार को बताना चाहते हैं, किसी भी प्रकार हमारा मन लगे। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के वनों में जाकर के इतने जोर से बांसुरी बजाते हैं, वो बांसुरी के ध्वनि को सुन करके सारे ब्रजवासी मोहित हो जाते हैं। ब्रजवासी तो छोड़ो, वृंदावन के पशु भी मोहित हो जाता है, और तो जो छोड़ो। जब भगवान अपने बांसुरी ध्वनि के द्वारा ग्वालियर को बुलाते हैं कि बलराम जी को बुलाते हैं, यमुना भी अपना बहना बंद कर देती है, वो भी स्तंभित हो जाती है। और वो बांसुरी के ध्वनि को सुन करके स्वर्ग के देवता लोग स्वर्गवासी अपने पत्नियों के साथ विमान में उड़ के जाते रहते थे, और जब भगवान की बांसुरी ध्वनि सुनते तो अपने विमान को रूक देते हैं, रूक करके सुनते थे। और देवताओं का पत्नियां भगवान की बांसुरी ध्वनि सुन के अपने संगीत विद्या, अपने योग्यता के ऊपर धिक्कारते थे, क्या है हमारा ये, इसके सामने हमारा संगीत विद्या, हमारा योग्यता क्या है, वो अपने के ऊपर धिक्कारते थे। जब भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी ध्वनि बादल भी सुनते थे, अपने बादल को रूप देते थे। इसीलिए कृष्ण और बादल दोनों मित्र हैं। ये बहुत ही संसार में जब लोग गर्मी के द्वारा जल उठते हैं, ठीक उसी समय बादल अपने पानी के द्वारा जले हुए लोगों को राहत देती है। ठीक उसी प्रकार ये बहुत ही संसार में जो लोग अपने भौतिक स्थिति के द्वारा दुखी हो जाते हैं, ठीक उसी समय ये कृष्ण भावनामृत एक बादल के रूपी ऐसे लोगों को राहत देती है। तो गोपियों का यही आज कहना है कि कृष्ण भावनामृत किसी भी कीमत भी चुकाना पड़े बन जाइए। तो कृष्ण भावनामृत बन गए तो फिर हमारा सारे पूजा तपस्या ध्यान योग सिद्धि जो भी है वो हमें प्राप्त होगी। तो वो सिद्धि को प्राप्त करने के लिए उपाय क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्रील प्रभुपाद की मित गौर प्रेमानंदे।